चलिए जी, तफसीर देखते हैं आयत नंबर 44 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अनज़लनत तौरात फ़ीहा हुदन व नूर। बेशक हमने नाजिल की तौरात जिसमें हिदायत और नूर था। يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا। इसी के मुताबिक फ़ैसला करते थे वो नबी जो मुसलमान हुए उन लोगों के लिए जो लोग यहूदी हुए। والربانيون والأحبار और अहले इल्म और उलमा भी इसी के मुताबिक फ़ैसले करते थे। क्यों? इसलिए कि बिमा इस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, कि उनको इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था। वकानू अलैहि शुहदा, और वो इस पर गवाह थे। लिहाजा अब क्या चाहिए? फ़ला तख्शवुन्ना सवख्शौनी, बस फिर अब लोगों से ना डरिए और मुझसे डरिए। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों के साथ थोड़ी कीमत न ख़रीदिए। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़ौलाइका हुमुल काफिरून, और वो लोग जो अल्लाह के नाजिल किया जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, यही लोग जालिम हैं, यही लोग काफिर हैं। तो यहाँ से रुकू का आगाज़ है। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी तरफ निस्बत करके बात को शुरू किया कि हमने तौरात को नाजिल किया। इस आयत में से काबिले तवज्जो बातों को अगर हम देखेंगे तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि तौरात की क्या खूबियाँ थीं। दूसरी बात इस आयत से हम देखेंगे कि कोई किताब क्यों नाजिल की जाती है। तीसरी चीज़ देखेंगे कि लोगों का डर किताब पर अमल करने से रोक लेता है इंसान को। और चौथी बात हम देखेंगे कि जिस सोसाइटी में किताब के आने के बावजूद भी अगर किताब के अहकामात पर अमल नहीं किया जाता तो फिर ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में क्या हैं। पहली चीज़, इन्ना अनज़लनत तौरात, हमने नाजिल की तौरात। तो क्या पता चला कि तौरात भी इल्हामी किताब थी। जैसे आज कुरान पाक लोगों की हिदायत के लिए हम सब के पास मौजूद है, इसी तरह जब अल्लाह ताला ने उस वादे को पूरा करना चाहा जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पे उतारते हुए किया था, और वो क्या था कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब मेरी तरफ़ से तुम्हारे लिए हिदायत की बातें आएंगी, फ़मन तबिय हुदाया, फिर जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। गोया कि ये एक वादा था कि आदम की जिस्मानी तख्लीक तो अल्लाह सुबहान तआला ने कर दी, तो ऐसा नहीं कि इसको पैदा करके छोड़ दिया और उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका ना बताया जाए। दुनिया में भी देखिए कि आप कोई मशीन ख़रीदें लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा मैनुअल गाइड ना हो कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, किस वोल्टेज पे इसको रखना है, क्या इसमें पानी डलेगा कि नहीं डलेगा, तो वो चीज़ कई दिन की आई हुई बेकार काउंटर पे रखी रहती है। आप उसको रिस्क नहीं लेते खोलने का या चलाने का कि कहीं मैं मिस यूज़ ना कर दूँ, बल्कि आप सोचेंगे कि ये मशीन यूज्ड है या कंपनी अच्छी नहीं या कोई जाली प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ गया, लिहाजा मैं इसको वापस कर देती हूँ, ये काम का नहीं। ये तो बातें दुनिया की चीज़ों के लिए थीं, लेकिन अगर हम गौर करें ना तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को इस ज़मीन पे उतारा तो ज़रूरत थी कि एक मैनुअल गाइड भी दिया जाए, इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारे करें, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम सिर्फ़ अल-खालिक ही नहीं अल-हादी भी है, हिदायत देने वाला, रास्ता दिखाने वाला। इसके लिए फिर अल्लाह ताला का जो एक सेट सिस्टम था वो यही था कि हर दौर के लोगों के लिए कोई एक हादी, कोई राहबर, कोई रहनुमा भेजा जाएगा जो उनको अल्लाह ताला की मर्ज़ी बताएगा। اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کی بات کو سن کے مانتے جائیں گے اور انشاءاللہ جنت کے دفتر میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ یہ ایک فطرت کا سمپل سا اصول تھا۔ اب اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کن کا انتخاب کیا جائے۔ ایک صورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہر ایک کو ڈائریکٹلی بات پہنچائے۔ پہلی اس پاسبلٹی یہی ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آئے، خط آئے، ہر ایک کے ہاتھ میں روز ایک خط آیا ہو، یا پیدا ہوتا ہی بچہ ساتھ ہی کوئی ایک ایسا مینول لے کے آتا کہ بھئی یہ کرو، اور جہاں اس کو ضرورت پڑتی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ صرف کتابیں دے دی جاتی اور کوئی سکھانے والا نہ آتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو ہر ایک سے بات نہ کرے لیکن کچھ قاصد بھیجے، کچھ میسنجرز، کچھ پیغام رساں بھیج دے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ ان تینوں آپشنز کا تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پہلی دو آپشنز بالکل بھی نیچرل نہیں لگیں گی۔ آپ اور میں، ہم صبح و شام یا اپنی زندگیوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، آپ مینجمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو جو کسی بھی کمپنی کا باس ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہر بندے سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتا، اور یہ پاسیبل بھی نہیں۔ اور اگر ایسا ہونے لگے تو نقصان کیا ہوگا کہ اصل چیزیں رہ جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز میں سارا وقت گزر جائے گا، اور انسانوں کی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں، سب کچھ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ لاکھوں، کروڑوں، ملین، ٹریلین لوگوں کو ہر روز انڈیویجولی ان کی ورک شیٹ بھیجتا، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، آج یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ انسان کی یہ اوقات نہیں کہ براہ راست وہ مالک سے بات کرے۔ پہلی وجہ ادب کے خلاف، تکریم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے مقام کے خلاف تھی۔ دوسری بات یہ ہے، اگر براہ راست اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کرتا تو کس میں جرت رہتی کہ اس حکم کا انکار کرے۔ آج ایک پیغام ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے ذریعے آپ کو پہنچایا جاتا ہے، آپ اس کو بھی اہم سمجھتے ہیں، اور ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کسی کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یہ کرو۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کام ہے کہ ایک باس اپنے آفس میں بیٹھا ہوا اپنے پی این کو بھیجتا ہے کہ یہ کام کر لو، اور دوسرا یہ کہ باس خود اپنی جگہ سے اٹھ کے آپ کے کیبن میں آ جائے، تو حالت ایک ہی رہتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی تھی۔ آج بھی غیب کا پردہ اٹھ جائے تو سب کی گردنیں جھک جائیں، سجدوں میں چلے جائیں، رکوع میں چلے جائیں، کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ انکار کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ درست بھی نہ ہوتا۔ ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ مالک کائنات سے بات کر سکے۔ اس کے لیے پھر اس نے انبیاء کرام کو چنا۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ انسانیت کی معراج۔ آپ یہ جملہ نوٹ کر لیجئے کہ انسانوں میں سے بہترین انسان، ہر دور کے یعنی اپنے اپنے دور کے بہترین انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغام کے لیے چنا۔ اور اس کی بات بھی قرآن پاک میں بہت جگہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام جب اللہ کے اور بندوں کے بیچ میں ایک واسطہ بن گئے، ایک وسیلہ بن گئے، ایک کیریئر بن گئے، مینس بن گئے، تو پھر ان انبیاء کرام کی بھی ٹریننگ ہو؟ کیونکہ آپ کسی نئے بندے کو کسی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ خود کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے لیے پھر اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی ٹریننگ کیسے کرواتا ہے؟ چند سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ایسے خاندانوں اور ایسی اقوام میں سے اٹھاتا ہے جو اپنے معاشرے کی مہذب قوم ہوتی ہے۔ جاہلوں میں سے نہیں اٹھاتا، بدوؤں میں سے نہیں کوئی نبی آیا، کوئی سب سٹینڈرڈ لوگوں میں سے نہیں آیا کہ جو اخلاقی طور پہ یا تمدنی طور پہ پیچھے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اعلیٰ خاندان سے کوئی نبی اٹھتا ہے تو اس معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں کو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس کی بات سمجھنا آسان لگتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نبوت سے پہلے کی۔ आगे बात होगी कि जब नबी आ जाता है तो इवन वो बड़े ही ख़ानदान का क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग उसकी बात के आगे ख़ुद बड़े बनने लगते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे ख़ानदानों से अम्बिया कराम को उठाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ अरसा, तकरीबन 40 साल, यानी एक एवरेज एज कह लीजिए कि पैदाइश से लेके 40 साल के अरसे तक, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को तो पहले ही दिन किताब मिलने की खुशखबरियां मिल गई थी, क्योंकि उनकी पैदाइश बजाते खुद एक मौजज़ा थी। आप कह लें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ के पेट के जो 9 महीने गुजारे होंगे वही उनकी एक ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है, या उनको अंदर ही इस तरह से इनग्रेव कर दी उनके ये शरीयत की बातें और चीज़ें कि पैदा होते ही उनकी ज़ुबान से ये बात निकली जो अमूमन दूसरे अम्बिया कराम से 40 साल की उम्र के अंदर उनकी ज़ुबान पे आई। इन 40 सालों में अल्लाह ताला उन नबियों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है, कभी मुश्किलात में, कभी बीमारियों में, कभी आजमाइशों में, कभी लोगों की तरफ से ठुकराए जाने में, ताकि लोग हालात के थपेड़े खाते खाते अब अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाए। और ये ट्रेनिंग जब तक नहीं होती, बंदा रब का काम और रब के दीन का काम कर नहीं सकता। अम्बिया कराम के पास तो एक बहुत बड़ा मिशन होता है। आज भी आप देख लीजिए कि एक हम छोटी सी मिसाल देख लें कि छोटे से दरख्त के ऊपर आप ज़्यादा फल लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है। आज वेस्ट में ऐसी कोशिशें हुई ना, छोटा सा ऑरेंज का दरख्त होता है और वो पूरा दरख्तों फल से लदा हुआ है। आप ऑरेंज खोल के देखिए, वो टेस्ट नहीं होगा जो एक फितरी तौर पर कुछ अरसा पौधा लग के बड़ा हो के नेचुरल वे में जो ऑरेंज लगता है, यही फ़र्क होता है। अल्लाह ताला जब आजमाइशें डालता है तो उससे हौसले भी बड़े होते हैं, लोगों को डील करने का तरीका आता है। आलमोस्ट ऑल प्रॉफिट्स ने बकरियां चराई, और बकरी जानवरों में सबसे शरीर जानवर है, शरारती होती है। क्यों चराई? कि आज जैसे तुम शेफर्ड बने हो, बकरियों की शरारत के बावजूद तुम उनके साथ बरहम नहीं होते, कल तुमने अपनी उम्मतों को चराना है, कल उम्मतों को लेके जाना है। उनका दिल तो चाहेगा कि ख्वाहिशात की गुलामी करें, दुनिया को देखें कौन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या उधर, लेकिन तुमने उनको सीधे रास्ते पे लेना है। ये था मनहज। फिर उसके बाद अल्लाह ताला तीसरे मरहले पे अम्बिया कराम को तन्हाई में इबादत करने की आदत डाल देता है। ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त बंदे और रब के बीच में कोई नहीं होता, और वहाँ असल में दिल इस काबिल किए जाते हैं कि वो दिल अल्लाह के कलाम के बोझ को सहार सकें, कल जो उन पे ज़िम्मेदारी आनी थी उसको अभी से कबूल करने के काबिल हो सकें। सूरत मुज़म्मिल पे कभी ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह जब आप सूरत मुज़म्मिल पे आएंगे तो आपको एक अजीब ही सोच मिलेगी। पूरी सूरत असल में एक एजेंडा है अल्लाह के काम करने वालों को जो दिया गया। एनी हाउ, अब होता क्या कि जब पैगाम आता है, वही आती है फरिश्ते के ज़रिए, तो उस वही के अंदर अमूमन जो बातें इब्तिदा में पेश की जाती हैं वो इंसान की अपनी इस्तकामत की होती हैं। इक़रा, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन का पहला लफ्ज़ के इक़रा अमर है, डूज़ है, आप पढ़िए बिस्मी रब्बी का, रब के नाम के साथ। गोया के पहले मरहले पे नबी को अपनी ज़ात को ट्रेन करना होता है, और देन फिर उसके बाद वनज़िरफ़ अशीरतकल अक़रबीन, जो फनज़िर अपने रिश्तेदारों को डराइए, करीब वालों को डराए, क़ौम फ़ानज़िर। तो किस्सा मुख्तसर, सारी बात का ख़ुलासा मैंने क्यों किया कि आज के इस रुकू में आप तरतीब के साथ देखेंगे कि जो मशहूर इल्हामी किताबें हैं वो किस किस तरीके से दुनिया में आई, पहले किसका दौर था, फिर उसके बाद दूसरा दौर किसका आया, और आज किसका दौर है। पहली बात, जो इल्हामी मज़ाहब में पहली किताब है वो कौन सी थी? इन्ना अंज़लना तौरात, हमने नाजिल की है ये तौरात, ये हमारी किताब है, इस पे हमारा नाम लिखा हुआ है, ये हमारी तरफ से है। इतना सुकून देती है ना ये बात कि हम अल्लाह की ओरिजिनल किताब पढ़ें। 5 सेकंड तक ज़रा आप अपने आप को इस एक जुमले की रोशनी में चेक तो करें। मेरे रब की नाजिल की हुई किताब, मैं बराह रास्त इसको छू सकती हूँ? अपने हाथों में रखे हुए कुरानों को छू के देखिए, इन लफ्ज़ों को देखिए, ये अरशे कायनात का जो मालिक है उसके अल्फाज हैं, उसने कहाँ से भेजे अपने बंदों के लिए। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम इस किताब को पकड़ के इसको पढ़ने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा हमने नाजिल की तौरात, यहाँ ये नहीं लिखा कि किस पे नाजिल की, लेकिन हमें दूसरी आयतों और अहादीस से भी पता चलता है कि ये किताब मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। ज़हन में रखिएगा कि बनी इसराइल में बहुत सारे अम्बिया कराम आए थे, लेकिन तौरात मूसा पे नाजिल हुई थी और बाकी नबियों ने फिर इसी की तालीमात दी। अब हुआ क्या, इसमें क्या था, हुदम व नूर, हिदायत भी थी और नूर भी था। ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं और कुरान पाक में बार बार आएंगे, लेकिन इनकी असल क्या है। देखिए, हुदन बैरूनी रहनुमाई का नाम है, दुनिया में जीने के तरीके, हलाल हराम के कवानीन, अल्लाह की पसंद और नापसंद की बातें, मैनर्स, एटिकेट्स, तुम्हारा जाहिर, तुम लोगों से कैसे डील करते हो, नमाज कैसे पढ़ी जाए, हज कैसे किया जाए, इंसान ये सारी बातें इस हुदन के लफ्ज़ में पाता है। सुबह उठते से लेके रात को सोने तक के तमाम तौर तरीके ये हुदन में आते हैं, गाइडलाइन, अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है। और नूर क्या है, अंदर की रोशनी है, बातनी इस्लाह की बातें की। अल्लाह की किताबें इतनी मुकम्मल होती थी और है आज भी कुरान पाक की सूरत में, कि जो इंसान को बैरूनी दुनिया में जीने का तरीका भी सिखाती है और अंदरूनी दुनिया के अंदर भी एक इत्मीनान और एक रोशनी और एक सुकून का तरीका अख्तियार करती है। एक आज के दौर का जो मिसकॉन्सेप्शन है वो साथ ही साथ देखते जाते हैं, यानी जो किताबों के साथ मिसकॉन्सेप्शंस हुए, अफसोस की बात है कि आज के दौर में कुरान पाक को अगर मजहबी किताब के तौर पे सामने रखे तो हुदन की बातें तो बहुत हैं, इससे हिदायत लेने के तो बहुत सारे तरीके हैं और छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी बहसें भी मौजूद हैं, एक एक मसले पे पूरी पूरी किताबें भी लिखी हुई हैं। हल्का सा किबले के तायुन में 19-20 का फ़र्क जो है वो लोगों के एक दूसरे के ऊपर फतवा देने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन नूर वाली बात कम है। ये किताब अंदर की इसलाह कम करती है। जितनी रस्मी या गैर रस्मी तालीम है आज के दौर में, इल्ला माशाल्लाह, हमेशा तो सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन बात जब भी की जाती है तो मुआशरे के रुझानात को देख के की जाती है, और वो रुझान क्या है कि जाहिर पे बहुत बात है, बातिन की इसलाह नहीं है। उसकी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, इसलिए कि वक्त कम होता है, ख़त्म करने की बात होती है। अब 8 साल अगर कोई एक जगह जाता है एक मदरसे में और उसको आपने 20 किताबें पढ़ानी हैं और एक दिन में आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं और उन 8 सब्जेक्ट में से आपने तकरीबन कोई 4 नई बातें सीखनी हैं, फिर उसको याद भी करना है, फिर अगले दिन उससे सुनना भी है, जब टीचिंग स्टाइल इतना मैकेनिकल हो जाए तो हकीकत है कि उसमें जज्बात की चाशनी नहीं रहती। जज्बात को शामिल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो वक्त चाहिए होता है। मिसाल आपको देती हूँ कि हम सब कुरान पढ़ रहे हैं, अभी शायद कि मैं फ़ौरन आपको सारी लफ्ज़ी वजाहत कर दूँ, इसके हुदन का मतलब बता दूँ, नूर का बता दूँ, इसकी शान नज़ूल बता दूँ, इस पे दो चार जो अहादीस हैं वो बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़े हो गई, मैं अगली आयत पे जा सकती हूँ। लेकिन मैं पढ़ाते हुए महसूस करती हूँ कि सबसे ज़्यादा वक्त जिस चीज़ के लिए दरकार होता है ना, वो नूर के लिए होता है। इसलाह अप्लाई कैसे करो, अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे लेके आओ, तो इस चीज़ की ज़रूरत बहुत है। हम जब किताबों को सिर्फ इसलिए पढ़ने लगते हैं ना कि हमें पता चल जाए कि हमने किताब पढ़ी हुई है, हमने ये कोर्स किया हुआ है, हमने फलां मदरसे से सर्टिफिकेट लिया, हमें इजाज़ा मिल गया, हमें सर्टिफिकेशन हो गई हमारी, तो ये चीज़ें बाद दफ़ा लोगों को मुतमईन करके बिठा देती हैं। मैंने उन लोगों के मुंह से बड़े फ़ख्र बड़ी रौनत के साथ सुना है कि हमने तो पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, हमारे पास तो डिग्री मौजूद है, हमारे तो पूरे नंबर आते हैं, लेकिन बात करने का अंदाज़ और टोन से पता चल जाता है कि अभी अंदर की इसलाह की ज़रूरत है। तो बहरहाल हुदम व नूर एक तरफ हिदायत है और एक तरफ नूर है। हिदायत ज़ाहरी ज़िंदगी के रास्तों का नाम है और नूर अंदर की रहनुमाई का नाम है। अंदर का इत्मीनान, अंदर का सुकून, और जब तक अंदर सेहत नहीं होगी बाहर बात नहीं बनेगी। आप किसी को नमाज की कितनी बहसें क्यों ना कर लें उसके सामने, ए टू जी एक एक मसले को सिखा दें, इस इमाम का ये कॉल, दूसरे इमाम का ये कॉल, तीसरे ने ये कहा, एक एक बात कर दें, लेकिन अगर उसका अंदर तैयार नहीं है ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये सारी बहसें पढ़ने के बाद भी वो रात नमाज से बग़ैर सो जाएगा। सच है कि झूठ? आज ऐसा माशरा है ना, लोग किसको नहीं पता कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पता इस्लाम में नमाज का क्या मुकाम है, जमात की नमाज का कितना अजर है, कितने हैं पढ़ने वाले। क्यों ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि हाफिज़े कुरान हैं और फुहश चीज़ों में पढ़ गए। बच्चा तरावी पढ़ाता है रमज़ान में और उसकी माँ कहती है कि दुआ करो कि ये नमाज़ भी पढ़ ले। मैं उनका मुंह देख रही हूँ, मैंने कहा रमज़ान में ये बच्चा तरावी पढ़ाता है, इसके पीछे 40-50 लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या बाकी नमाज़ें नहीं पढ़ता? कहती सुस्ती करता है। और एक माँ ने तो यहाँ तक खबर दे दी, किसी और मुल्क की बात है, कि बच्चा हाफिज़ कुरान है और ख़राबियों में पड़ गया, जिस्मानी गंदगियों में पड़ गया। क्या हुआ? दिल नहीं बदला, अंदर रोशनी नहीं आई। याद रखिएगा एक बात, अल्लाह के नबी ने दिल के रास्ते तालीम दी थी। अंदर का नूर बाहर खुद बहुत हिदायत की सूरत में दिखने लगता है, फिर कहना नहीं पड़ता, फिर तो बंदा खुद पूछता है कि मैं क्या करूं। अल्लाह से मोहब्बत होगी, आपका दिल बदल जाएगा, आप खुद बखुद रास्ते ढूंढने लगेंगे। और अगर आपने अंदर को लेने के बगैर ऊपर का बातें कर दी, वो एक और खौल चढ़ जाता है, तकब्बुर की एक और चादर चढ़ जाती है कि हाँ अब तो हम कुरान भी पढ़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि किताब के अंदर से जो दो बड़े मकासद थे जो किताब को पढ़ने के, वो हमें दोनों ही मिले, ना हम बैरूनी रहनुमाई से महरूम हो, ना हमें ये पता चले कि हमारा दिल तो तैयार है, आग अंदर भड़कने को तैयार है, एक तेल दिखाने की देर है, लेकिन हमें सही तरीका ही नहीं आता नमाज़ पढ़ने का। मैंने ये लिटरली ऐसे लोगों को देखा, पूरा पूरा कुरान पढ़ चुके होते हैं, सर्टिफिकेशन हो चुकी होती है, इसके बावजूद नमाज सही नहीं पढ़ रहे होते। पूछा जाए क्यों, तो वो कहते हैं कि हमारे तो पूरे कुरान के सफ़र में नमाज पे इस मौजू पे बात ही नहीं हुई, नमाज के तरीके पे बात नहीं हुई। अब बेशक वो किसी अलग जगह होती होगी, हर मदरसे में मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र के नाम पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कई कई साल, बल्कि कई कई मुख्तलिफ एंगल से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी पिछले कई सालों के मुशाहदे से देखी वो ये है कि लोग जिस चीज़ को कुरान पढ़ने के दौरान सुन लेते हैं ना, उसको ज़्यादा अहम समझते हैं। कुरान के सफ़र के दौरान जो बात सुनी जाती है ना, लोग उसको सीरियस ज़्यादा लेते हैं, लोग उसको अहम समझते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको एक अलग तरफ कर देते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि ये साइड पॉइंट है, ये ना भी करें तो खैर है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ें तो इसी के दौरान ही हमें कम अज़ कम ऐसी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि जिससे हमारे अमल भी बदलें। इसीलिए आप देखिए कि जहाँ नमाज की बात आती है, हम लिटरली नमाज की बातें करते हैं, हम फ़राइज़ की बात करते हैं, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफिल है, ये छूट जाए तो वज़ू होता ही नहीं, ये छूट जाएगा तो वज़ू हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा, और ये ना हुआ तो कोई बात नहीं। ये तफसीलात अमूमन तफसीर का हिस्सा नहीं होती, लेकिन क्यों ये दी जाती हैं? हुदम व नूर, ये दो लफ्ज़ जोड़ लीजिए आपस में, ये दो जुड़ जाते हैं ना, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है। वो क्या है? यहकुमु बिहन नबीयून। बात तो यहाँ नबियों की है, नबी जो हैं उन्होंने फ़ैसले किए इसके मुताबिक। और अगर हम अपने एंगल में देखें तो जब अंदर आग लग जाती है, जज्बात भड़क उठते हैं, इमोशनली आप इतने मिच्योर, इतने यानी जिसको कहते हैं ना बस जलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर बाहर की रहनुमाई मिलती है, तो फिर तो पीछे रह ही क्या गया, फिर तो बंदा तड़पता है कि अल्लाह मैं तेरी किताब के मुताबिक फ़ैसले करूँ, मेरी ज़िंदगी तेरी किताब के मुताबिक हो, मेरी ज़िंदगी अपनी मनमानी ख्वाहिशों के मुताबिक ना हो, मैं तो तेरी फ़ैसलों को अपनी ज़ात पे लाना चाहती हूँ, मैं तो अपने घर में लाना चाहूँगी, मैं तो अपने इदारों में लाना चाहूँगी, मैं तो अपने मुल्क के निज़ाम में लाना चाहूँगी। इतना प्यारा स्लो प्रोसेस है कि एक आता है ना तो दूसरा खुद ही आ जाता है, फिर दूसरा आता है तो तीसरा आता है। अमूमन हमारे माशरों में आज के दौर में क्या होता है ऑपोजिट वे, लोगों ने इन तीन चीज़ों को अलग कर दिया। आप अपने नोट्स में एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, एक कोने पे आप ऊपर लिखिए नूर, साइड पे राइट साइड पे लिखिए हुदन, और लेफ्ट साइड पे आप लिख दें यहकुमो, या आप एक एरो भी बना सकते हैं। एक से चीज़ दूसरी मुंसलिक है, पहले अंदर रोशनी आती है, फिर इंसान बाहर की गाइडेंस चाहता है कि अच्छा मैं देखूं मेरी नमाज़ ठीक है भी कि नहीं, मेरे तौर तरीके ठीक हैं भी कि नहीं, और जब अल्लाह को क्या पसंद है, जीने के क्या तरीके हैं, मरने के क्या तरीके हैं, ये दूसरे लेवल पे आता है। और देन द थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट डिमांडेड प्रे क्या है कि यहकुमु बिहा, फिर इसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। यहकुमु बिहा को आसान लफ्ज़ों में आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि अप्लाई करते हैं, फिर उसको अपनी ज़ात पे अप्लाई करते हैं, फिर अल्लाह ताला की बातें ज़िंदगी में आने लगती हैं। शादी का मौका आता है तो यहकुमु बिहा, गम का मौका आता है तो यहकुमु बिहा। बहुत आसान इसका तर्जमा क्या कि अमल करते हैं इस पे, ऐसे ही है ना। आज हमारे मुल्कों में या हमारे मुसलमानों का मसला क्या है कि हम यहकुमु से बात शुरू कराना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग, इस्लाम को कायम करो, निज़ाम लाओ। आज आगे सारी आयतों में ये चीज़ आ रही है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इंशाल्लाह अगली बातें आपको वाजे होती जाएंगी। आज एक मुतालबा है, और वो क्या है कि जी इस्लामी निज़ाम कायम करो, राइट और रॉन्ग, कितने सालों से, वैसे अब तो मेरा हाल को मुतालबा भी नहीं करता, लेकिन पिछली कोई 10-20 साल पहले उसके दौरान काफ़ी ये मुतालबा था कि इस्लामी शरीयत आए, इस्लामी निज़ाम आए। आप कैसे ला सकते हैं, आप यहकुमु बिहा पे कैसे पहुंच सकते हैं? अभी नूर आपके अंदर आया नहीं, तड़प आपको लगी नहीं, आपके माशरे के लोग अभी इस आग के अंदर जले ही नहीं कि हमें अल्लाह की रज़ा चाहनी है। वो तो आके पूछ ही नहीं रहे कि माजा युनफिकून, वो तो पूछ ही नहीं रहे माजा युहिब्बुल्ला, वो तो पूछ ही नहीं रहे कि मता नसरुल्ला मतल क़यामा। सहाबे कराम के ये सवाल जो थे ना आके पूछा करते थे, ये उनके अंदर की उस रोशनी की रहनुमाई करते हैं। अंदर लगती है तलब तो फिर बाहर आते हैं, और फिर उसके बाद हिदायत की बातें अभी उम्मत में तो आई नहीं, अभी अकीम उस सलात के हुक्म पे तो बात ही नहीं हुई, आत उस ज़कात तो अभी हो नहीं रही। लोग इनफरादी तौर पे ज़कात नहीं देते, इज्तमाही तौर पे कहाँ से देंगे? अभी लोग अकेले घर में नमाज़ नहीं पढ़ते, वो जमात से जाके कहाँ पढ़ेंगे? आज लोगों को तो अपने अपने घरों की फ़िक्र पड़ी है, अपने घर बना रहे हैं, वो अल्लाह के घर कहाँ बनाएंगे? कभी दीन नहीं आएगा। नतीजा क्या निकलता है ऐसी बिल्कुल रिवर्स सेक्शन में होने वाली कोशिशों का, कि अगर कोई ज़बरदस्ती इस्लाम का निज़ाम राइज कर भी देता है, जैसे आज के दौर में वो लोग जो दीनी सोच रखते हैं, चाहे वो थोड़े हैं, लेकिन उनका दिल क्या है कि एक मोजज़ा हो रातों रात, या हमारे इलेक्शंस में या हमारी नॉमिनेशन में कोई एक ऐसा बंदा चुपके से नॉमिनेट होके आगे आ जाए जो कल अगले ही दिन कह दे कि अब सारी औरतें नमाज़ पढ़ेंगी, पर्दा करेंगी, सारे मर्द नमाज़ें पढ़ेंगे, सूद ख़त्म, दिस एंड दैट। चाहते हैं कि नहीं? देखिए ख्वाहिश तो है, हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि इस्लाम आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। ऐसे लोगों को आगे आने कौन देगा? फिर आप देखिए कि कुछ लोग दीन के नाम पे इसकी कोशिशें भी करते रहते हैं, जब कोशिश करते हैं वो कामयाब नहीं होती। एक बंदा इस्लाम के नाम पे खड़ा होता है सियासत में आने के लिए, 10 लोग लेग पुलिंग करते हैं, यहाँ तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तो लिहाजा पूरे रुकू के अंदर से हम इसी चीज़ को देखेंगे कि जब अल्लाह ने अपनी किताबें भेजी, नबी दुनिया में आए, अन नबीयून, वो कौन थे? अल्लज़ीन असलमू, वो मुस्लिम थे। नबियों का दीन क्या है? असलमू का, इस्लाम, मुतमईन होने वाले अल्लाह की रज़ा पे। ये क्या बात हो गई, अल्लाह के नबी, और साथ ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ये मुसलमान थे। क्या कोई नबी गैर मुस्लिम भी हो सकता है? एक सवाल आता है ना जहन में कि अल्लाह के नबी असलमू मुसलमान थे, तो क्या नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं? यहाँ एक सवाल हो सकता है हम सबके जहन में कि क्या अल्लाह ताला के नबी जो हैं वो गैर मुस्लिम भी होते हैं? अगर हम कहेंगे नहीं हो सकते, इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसा हो, तो फिर ये बताइए कि क्या इस बात की यहाँ ज़रूरत थी और ऐसी क्यों आई? तो यहाँ मैं आपको ये छोटी सी बात बता दूंगी कि देखिए अल्लाह के नबियों के नाम के साथ जहाँ जो असलमों की बात की गई, ये क्यों की गई? इसकी दो वजूहात हैं, आप नोट करेंगे। पहली वजह यह है, बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये तारीफ़ का जुमला है। नबी तो बनता ही बंदा तब है जब वो मुस्लिम होता है। इताअत, सबमिशन, सरेंडर होना, अल्लाह के लिए झुक जाना, तारीफ़ की गई, स्पेशली कर दी, यानी एक्स्ट्रा है। बस ये भी कह दिया जाता यहकुमु बिहन नबीयून तो बात काफ़ी थी। लेकिन बाज़ कहते हैं कि ये यहूद के नज़रिए का रद्द है। वो क्या है, यहूद क्या कहते थे, यानी वक्त में, वो गुज़रते हुए वक्त के साथ जो उनके अंदर ख़राबियाँ आई थी, उसमें एक ये भी ख़राबी थी नाउज़ु बिल्ला, कि उनका अकीदा बन गया था कि नबी नाफरमान भी हो सकते हैं। आज भी उनकी किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि फ़लाँ नबी ने शराब पी, नाउज़ु बिल्ला, सुम्मा नाउज़ु बिल्ला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आज भी उनकी किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि उन्होंने बरहना हुए, फिर सारी रात वो शराब पीते रहे। यहूद की किताबों में आज भी लिखा है कि नबी बुत परस्त भी हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे एक इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, और वो क्या था कि इन्होंने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए बुतों को सजदा किया। और इसी से फिर बात मशहूर हो गई थी कि नऊज़ु बिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो गलत चीज़ पे थे। इसका रद्द आप सूरह बकरा में पढ़ चुके कि वमा कफ़र सुलेमान, जादू का जो टॉपिक आया था हारूत और मारूत वाले रुकू में, तो वहाँ अल्लाह ताला ने ये जुमला कोट करवाया कि वमा कफ़र सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। तुम कैसे कहते हो किया? देखिए कि नबी के लिए ये कहना ना कि उसने कुफर नहीं किया, ये उसकी तारीफ़ नहीं बल्कि उसकी मजम्मत भी होती है। ये मुनासिब नहीं लगता किसी नबी के बारे में ये कहा जाए कि उसने कुफर किया था या नहीं किया था। एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा कि किसी मुत्तकी और परहेजगार इंसान से गुनाह की नफ़ी करना भी उसकी तारीफ़ नहीं बल्कि मजम्मत होती है। यानी गुनाह की नफ़ी करना कि वो ये गुनाह नहीं करता, ये तारीफ़ नहीं है, मजम्मत है। मैं मिसाल देती हूँ आपको, शायद बात आसान लगे। आप किसी बहुत नेक या बहुत साहिब शऊर इंसान को बुलाएं आप किसी महफिल में और अपना इंट्रोडक्शन कराएं। लेट्स सी, अगर वो कोई आपका उस्ताद है, बिलफर्ज़ कोई आपका माजी का उस्ताद है या कुछ भी है, आप लोगों से मिलाते हैं, आप अपनी दोस्तों से कहते हैं देखें ये मेरी उस्ताद हैं, ये बहुत अच्छी हैं, और आपको पता है ये चोरियां भी नहीं करती, और ये तो बहुत ही अच्छी हैं, ये तो गिबतें भी नहीं करती, और ये तो बड़ी अच्छी हैं, ये तो कोई जिना भी नहीं करती, ये आपकी तारीफ है क्या? ये आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? ये है ये बात कि किसी मुत्तकी परहेजगार इंसान से गुनाह की नफ़ी करना इसकी तारीफ़ नहीं, उसकी मजम्मत होता है। अल्लाह ताला ने सुलेमान के लिए कह दिया था वमा कफ़र सुलेमान, क्यों? उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह ताला ने उनके इल्ज़ाम को धोना चाहा। तो यहाँ असलमू फिर नबियों की हालत बताई गई कि वो तो ख़ुद मुसलमान थे, इन्होंने पहले ख़ुद इस्लाम कबूल किया फिर लोगों को इस्लाम की दावत दी। ये बिल्कुल वही अंदाज़ है जो सूरत बकरा के आखिरी रुकू में भी हम पढ़े कि आमन अर रसूल, उसका नंबर नोट कीजिए इस पे, आमन अर रसूल, रसूल ईमान ले आया। क्योंकि जब आप ख़ुद किसी चीज़ पे अमल करेंगे तभी दूसरे को दावत देंगे। और एक चीज़ जहन में हमेशा रहनी चाहिए हम सब के, जब तक कहने वाला ख़ुद अमल नहीं करता उसकी ज़ुबान पे बात आती नहीं, उसकी आवाज़ में जोश आता ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस से बात कर ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो बात दूसरे को कहेगा कैसे जिस पे वो ख़ुद अमल नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे जब तक आपको श्योर ना हो कि फ़लाँ रेसिपी से बहुत अच्छा खाना पका है तो आप दूसरे को जोश से बता सकते हैं कि ये डाल दो आप, बहुत मज़े का होगा, क्योंकि उसको पता है जूँ ही मैं डालूँगी पता चल जाएगा ये तो इतना ख़राब खाना पका है। हाँ, जिस खाने के पकाने का आपको यकीन होता है ना इस तरीके से बहुत मज़े की चीज़ है, उसी पे कन्विंस करते हैं ना। तो यहाँ नबियों का मामला क्या था, असलमू, लेकिन कौमों का मामला क्या हुआ, लिल्लज़ीन हादू, मगर वो लोग जो यहूदी बन गए, एक अलग ही ग्रुप बन गया यहूदियत के नाम पे, ये वो लोग हैं जो ख़ुद यहूदी बने। इससे क्या पता चलता है कि यहूदियत इल्हामी मज़हब नहीं है, ये ख़ुद से बना हुआ एक गिरोह है, एक सेक्ट है, इनको मुस्लिम नाम अच्छा नहीं लगा, जैसे आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों को इस्लाम का नाम सिर्फ खाली अच्छा नहीं लगता, जब तक कि उसके साथ कोई नाम दूसरा ना लग जाए। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह की किताब में इनको यहूदी बनने को नहीं कहा गया। फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने अकायद और अपने आमाल में बहुत कुछ खुद ही शामिल कर लिया। अल्लाह ने जो किताब तौरात की सूरत में नाजिल की थी वो एक दस्तूरुल अमल थी, अमल वाली किताब थी, और इनको अमल करना मुश्किल लगता था। ये चीज़ भी वाज़े होनी चाहिए कि अल्लाह की किताब क्यों आती है, ताकि लोगों को हमेशा की फलाह का रास्ता दिखाए, ख्वाहिश परस्ती के अंधेरों से निकाल के उनको हक परस्ती की रोशनी में लाए। वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह ताला की किताब को अल्लाह और बंदे के दरमियान एक अहद समझते हैं, ट्रीटी प्लेज समझते हैं, ना उसमें कोई कमी कर सकते हैं ना ज्यादती कर सकते हैं। जो उस किताब में हुक्म आता है वो उसको मानते हैं, ऐसे ही अदा करते हैं जैसे किसी की अमानत अदा की जाती है, ठीक तरीके से उसकी अदायगी करते हैं। वो बंदों के हकूक़ हों या अल्लाह ताला के हकूक़ हों, वो सबको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाहिश परस्त होते हैं, वो अपनी ज़ात को बहुत जगह देते हैं, उनकी नज़र में अपनी ज़ात बहुत बड़ी होती है, सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग। ऐसे लोग जो हैं उन्होंने क्या किया कि अल्लाह की इन किताबों में तब्दीलियां शुरू कर दी, जो बात उसमें होती थी उसको बदल के कुछ और का और बना दिया। तो फरमाया लिल्लज़ीना हादू, उनके यहूदी बन जाने वाले लोग, और कौन? व रब्बानीयून, और रब्बानी, रब्बानीयून रब्बानी की जमा। रब्बानी कौन होता है? रब वाले। देखिए यहूद के दीनदार तबके के लिए दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती थी अमूमन, एक रब्बानी और एक हिब्र। ये दोनों यहाँ साथ साथ आगे, रब्बानीयून कौन है? रब वाले। ये कौन लोग हैं? इबादत गुजार। आज के दौर में आप इसको सूफ़ी कह सकते हैं, तसव्वुफ से तरीकत से अपना ताल्लुक़ जोड़ने वाले सूफिया कराम, ठीक है। और अहबार हिब्र की जमा। हिब्र कौन होते थे? आलिम, मुफ्ती, उलमा। फ़र्क तो दोनों का समझ गए ना। आबिद कौन है? जो बस ये बातें करते रहते हैं, बैठ के चिल्ला कशी करते रहो, अल्लाहू करते रहो, तस्बीहें पढ़ते रहो, लोगों को बस तरीके बताते रहो, साहिबे तरीकत, ठीक है। और हिब्र कौन होते हैं? अहबार, जो इल्म से बात करते हैं, उनके पास जो बात होती है वो इल्म की बुनियाद पे होती हैं। ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज नहीं थी, हर खिब्र रब्बानी भी बन सकता है और हर रब्बानी को हिब्र भी होना चाहिए। आप ये कह लें कि इल्म के बग़ैर अगर कोई शख्स सूफ़ी बन जाता है ना तो बहुत ख़तरे में, वो शेख नहीं बन सकता। क्यों? ये ख़ुद भी भटकेगा, दूसरों को भी भटकाएगा। इसी तरह आलिम सिर्फ इल्म से नहीं बचेगा जब तक के अमल ना करे। तो आप कह सकते हैं कि सूफ़ी के लिए इल्म की ज़रूरत है और आलिम के लिए अमल की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि इल्म वो रोशनी है जो अमल के रास्ते दिखाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनको जॉब क्या दी गई थी? इस्तुख़फ़िज़ू, तुम हिफाजत करो इस किताब की। इन दोनों गिरोहों पे किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी डाली गई थी, तौरात की हिफाजत करो। हिफाजत क्या मतलब? उसको बंद करके तो बाहर लॉक लगा के बैठे रहो, किताब कौन चुराएगा? लोग तो पैसों की भी नहीं लेते, फ्री भी नहीं लेते, चोरी कौन करेगा? यहाँ हिफाजत से मुराद क्या है? इसकी ज़बर ज़ेरों की हिफाजत, इसके पैगाम की हिफाजत, इसमें किसी के अफकार ना आए, इसमें कोई प्ल्यूट ना हो जाए चीज़, ये हिफाजत का ज़िम्मा दिया था। देखिए यहाँ तौरात की बात हुई तो इसकी हिफाजत उनके रिब्बियों और अहबार को दी गई, जबकि कुरान पाक की हिफाजत कहाँ है? अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मे लिया। सूरत अज़ारियात में आता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, या तो सूरह हिजर है या सूरत ज़ारियात, आप चेक कर सकते हैं। हाँ बेशक हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये फ़र्क होता है बंदों की हिफाजत में और रब की। जिस किताब की हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देखिए एक ज़बर और ज़ेर में तब्दीली नहीं हुई, और जिस किताब की जिम्मेदारी लोगों को दी आज उसका हाल क्या है? वो ज़ुबानी मौजूद नहीं। अगर आप एक हल्का सा तकाबुल कर लें ना तौरात और कुरान का, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने दौर में ये दोनों किताबें परफेक्ट फॉर्म में दी थी। कुरान पाक में और तौरात में बहुत सारी मुमासलतें हैं। मसलन आप देखिए कि तौरात सिर्फ अहकामात का मजमूआ नहीं थी, कानून की किताब भी थी, लॉज थे उसमें। दोनों में ज़िंदगी गुजारने के लिए आइडियल नमूने थे, मईशत माशरत के सारे असूल थे, हिदायत और रहनुमाई थी। दोनों किताबों में ये सब कुछ मौजूद थे, लेकिन इनके उलमा ने क्या किया, किताब को बदल दिया। व कानू अलैहि शुहदा, और वो इस बात पे गवाह भी थे। किस बात पे गवाह थे? कि हमें इस किताब की हिफाजत करनी है, हम चेंज नहीं कर सकते। इस एक जुमले से पता चलता है कि यहूद के उलमा या उनके रिबियों ने किताबों में जो चेंजेस की वो किस बात पे थी, इल्म के आने के बाद थी। इसीलिए पीछे आप पढ़ चुके, मिन बाद इमा जा का मिनल इल्मी, अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्म आने के बाद तुम अगर गलत काम करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। आज भी ऐसे ही होता है, जहाँ भी डेविएशन शुरू होती है हक से, वो इल्म के बाद शुरू होती है। एक शख्स वो है जिसके पास दीन पहुँचा ही नहीं, उसका मसला ज़्यादा अहम नहीं है। अहम उसका है जिसके पास दीन पहुंच गया, अब उसके बाद वो उसको किसी न किसी एक ख़ास रुख पे देखना चाहता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी हिफाजत की उनको ज़िम्मेदारी तो दी गई थी, और वो इसके हक होने पे गवाह थे। उनको पता था ये सच्ची किताब है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ख्वाहिशात, माल, मुट्ठी गर्म होना, मसला निकाल दो, ये हमारे लिए ज़रा कानून बना दो, ये रास्ता निकाल दो, और करते क्या थे, पैसा ले लेते। कभी हुब्बे जाह और कभी हुब्बे माल, वो दो लफ्ज़ याद रखिएगा, पीछे भी गुज़रे। या माल की मोहब्बत या ओहदे मर्तबे की मोहब्बत ने उनको किस बात पे मजबूर कर दिया कि किताब में तब्दीलियाँ करने लगे। हालांकि वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, हुक्म ये था कि देखो मेरी आयतों के साथ थोड़ी कीमत ना लेना, अपनी मर्ज़ी से इनको ना बदलना। क्यों? बमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, और जो कोई ना फैसला करे अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक, ऐसे लोग क्या हैं, फ़ौलाइक हुमुल काफिरून, ये लोग हैं काफिर, मुनकर। ये आयत आखिरी हिस्सा बमल्लम यहकुम वाली इस रुकू में 3 बार आएगी। बजाय इसके कि हम आगे जाके बात करें, यही कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि इस आयत के एंड पे क्या आया, फ़ौलाइक हुमुल काफिरून, ये लोग काफिर हैं, मुनकिर हैं, इनकार करने वाले। आगे देखिए आयत 45 की आखिरी हिस्सा, मैं सिर्फ बात को मिलाने के लिए उसका आखिरी हिस्सा आपके साथ कर रही हूँ कि वमल्लम यहकुम बिमान ज़लल्लाहु फ़ौलाइक हुमुज़्ज़ालिमून, जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा तरीक़ों पे हुक्म या फ़ैसले नहीं करते वो ज़ालिम हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा कसास का कानून बयान हुआ है, पहले में इस किताब की हिफाजत की बात थी, यहाँ ज़ालिमून कहा। अब आगे चलिए आयत 47 का आखिरी हिस्सा देखिए, वल यहकुम के बाद जाती है कि वमल्लम यहकुम बिमान ज़लल्लाहु फ़ौलाइक हुमुल फासिकून, ये लोग नाफरमान हैं। इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं अपने नोट्स में, आसमान से एक हुक्म उतरा, फैसला उतरा, अल्लाह ताला चाहता है कि ये फैसला बंदे मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ठीक है, हम सोचते हैं कि फैसले सिर्फ अदालतों में होते हैं, ऐसे ही है ना, जब कोई फैसला कानून अदालत की बात आती है तो हमारे तसव्वुर में एक अदालत सज जाती है, एक जज बैठा हुआ है, दो वकील झगड़ रहे हैं इधर से उधर, और मुलजिम कटहरे में खड़ा है। हर अदालत इस ज़मीन के ऊपर नहीं होती, एक बहुत बड़ी अदालत है जो इंसान के जिस्म के अंदर है, उसका एक जज है जिसका नाम ज़मीर है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ज़मीर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपका अपना अंदर से नफ्स, किसी को आता है तो लिख सकते हैं आप लोग। यानी असल में अरबी में तो ये वही है जो नफ्स से लवामा, कॉन्शियस, अंदर से चोट पड़ती है। आप जो करते हैं ना, आपका अंदर बेचैन है, आपका अंदर बताता है कि आपका ये काम ठीक था कि नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को किसी ने नहीं कहा कि दरख्त का फल खा लिया तो बुरी बात है, उनके अंदर ने उनको बताया कि गलती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तौबा करने लगे। तो ये होती है ज़मीर की अदालत, हर इंसान के अंदर एक अदालत है। यहाँ वमल्लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाह को अगर आप देखें तो ये दो तरह से होती है। पहला क्या है, सिंपल अदालती फैसले जो आज कोर्ट्स में हो रहे हैं। सिंपल इसका माना एक तो पहला ये बन जाएगा कि जिन अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा, और अगर आप इसको थोड़ा वाइड कर लेंगे ना तो ये इस्लामी निज़ाम का निफास बन जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आज भी हमारे अपने ही मुसलमान मुल्कों में आप देखिए कि इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, क्योंकि कानून गैरों का है। तो पहली इसकी शिक क्या होगी कि जहाँ अदालतों में इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं, जहाँ चोर के हाथ कटने की बजाय उससे हमदर्दियाँ हैं, जिना करने को जायज़ और लीगल कर दिया जाए, जहाँ सूद के बग़ैर तिजारत का ना होना मुमकिन ही ना हो, इस तरह के जुमले बोले जाएं, तो एक तो इसका तरीक़ाकार ये है जो इस वक्त अमूमन दीनदार तबके की ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो ये 6 पारे पढ़ रही है, जितना भी अभी पढ़ा, इसके बाद आपके भी दिल में अब ये ख्वाहिश पैदा हो गई है जो पहले नहीं हुई होती होगी कभी, कि अब हमारे भी मुल्कों में दीन आए, इस्लाम नाफिज हो। चाहते हैं ना हमारे मुल्कों में भी इस्लामिक चीज़ों को देखें, और इसके लिए फिर हर बंदा अपने हिसाब से कोशिश भी करता है। लेकिन ये है सेकंड लेवल की चीज़, इसको आप नंबर 2 दीजिएगा। हालांकि इसका जिक्र पहले हुआ, मैंने इसलिए पहले किया कि हमारे जहनों में अमूमन ये चीज़ रहती है, हम चाहते हैं कि इस्लाम आए तो फिर बात बने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, और वो कौन सा है, वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्ला, इंसान का अपना जिस्म। आप ये कह लें कि एक है इज्तमाई नौयत का फ़ैसले करना कुरान के मुताबिक, उसमें तो निज़ाम आएंगे, इदारे आएंगे, मुआशरे आएंगे, मस्जिदें आएंगी, मदरसे, अदालतें, कानून, लॉज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आएंगे। लेकिन एक छोटी सी दुनिया हर इंसान के अंदर बसी हुई है, ये दुनिया, ये जहान एक पूरा आलम है। तो मैंने किसी का कॉल पढ़ा कि इंसान का जो जिस्म है ना, ये पूरी इस कायनात का एक मिनिएचर है। और फिर उन्होंने एक एक चीज़ को टैली भी किया हुआ था, मसलन जैसे देखिए कि ज़मीन है, कायनात में ज़मीन है ना, फ़ोन कलर की होती है ना, तो हमारी बॉडी की स्किन, ये स्किन ज़मीन है, लैंड है। फिर आप देखिए कि नबातात उगते हैं ना, छोटे छोटे पौधे उगते हैं कुछ ऐसे, तो उन्होंने कहा देखें ये हमारी स्किन पे जो बाल होते हैं ना, ये वो छोटे छोटे पौधे हैं। फिर इसी तरह उन्होंने पहाड़ों को दांतों से तशबीह दी हुई थी, एक बड़ी फ़नी सी चीज़ थी, लेकिन हकीकत है कि अगर देखा जाए रब को पहचानना है तो अंदर बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो ये जो दूसरी चीज़ है ना, वमल्लम यहकुम, वो क्या है, कुरान के मुताबिक अमली ज़िंदगी ढल जाए, अल्लाह की किताब इन सफ़ों से निकल के, कागज़ के इन सफ़ों से निकल के तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कान खुलकहुल कुरान, उनका अख्लाक तो कुरान थे, कुरान था, वो तो चलते फिरते कुरान थे। ऐसी शख्सियत बने जिनके सीनों के अंदर कुरान हिफ्ज़ किया हुआ तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन उनके रवैयों को दिख से दिखे, उनकी झुकी हुई निगाहों को देख के पता चले कि ये कुरान वाले हैं, ये किताब डिसॉल्व हो जाए, आपकी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, फिर ये किताब लोगों को फ़ायदा देती है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो इज्तमाई तौर पे ऐसे निज़ाम नहीं कायम करते जो इस किताब के मुताबिक हैं, और इनफरादी तौर पे अपनी ज़िंदगी में इस किताब को नहीं लाते, एक जगह काफिरून कहा, इनकारी हैं, मुनकिर हैं, दूसरी जगह जालिम कहा क्योंकि हक नहीं दे रहे इस किताब का, और तीसरी जगह फासिक कहा, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, ये लिमिट्स को क्रॉस करने वाले लोग हैं, ये आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आज क्यों ऐसे शेर कहने की ज़रूरत पड़ी कि मुझसे अकीदत के दावे और कानून पे राजी गैरों के, आज क्या कुरान की ये पुकार नहीं है? बातें करते हैं तो कहते हैं कुरान की तरफ पाँव ना हो, पीठ ना हो उसकी तरफ, इस किताब को इतना मुकद्दस समझा, इतनी ऊंची रख दिया अपने घर में कि हाथ ही नहीं पहुंचता, फिर पढ़ने को दिल भी चाहे तो कहते हैं अच्छा कौन जाए ऊपर, अच्छा बहुत मुश्किल है, चलो ठीक है ऐसे ही बैठ के वजीफ़ा कर लेती हूँ, ये छोटा पन सूरा जो पास है बस इसी से पढ़ लेती हूँ, अब इसको तो पढ़ने की लिए ज़रा एफर्ट करनी पड़ेगी, ये सब क्यों हुआ? आज हमारा यही जुर्म है कि हमने इस बंद किताब की तो तअज़ीम की, लेकिन ये जब जब ये किताब खुली तो हमने इसको नाकाबिले अमल करार दिया। हालांकि इस किताब की सच्ची कदरदानी क्या है कि इस किताब को खोला जाए, इसको पढ़ा जाए। हम मरने वालों पे पढ़ते हैं, ये किताब जीने वालों के लिए थी। इस किताब ने ही जीना मरना सिखाया था, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं फ़ौलाइका, ये लोग कौन लोग? वो लोग जो किताब के मामले में ख्वाहिश नफ्स को माने, वो लोग जो ज़माने के रस्म और रिवाज की पैरवी करें। और उलाइका से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के कानून के मुकाबले में गैरों के तरीक़ों को पसंद करें, जिनका लाइफस्टाइल, जिनके कानून, जिसकी रस्में, जिनके रिवाज, ये सब इस किताब से अपोजिट हैं। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे आज हम सबका ये जुर्म नहीं दिखता? किताब बंद है, ज़िंदगी में खुलती नहीं। जब चले जाते हैं तो घर वालों को परेशानी लगती है कि अब किन को बुलाएं, फिर वो लोगों को जमा करते हैं कि आओ हमारी मदद करो और इस किताब को पढ़ने में हमारा साथ दो। ऐसे बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि किताबें ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करने के लिए आती हैं, लेकिन वो लोग जो तब्दील होना नहीं चाहते ना, वो इन किताबों से फिर ऑफेंड होते हैं, उनको रिएक्शन होता है। आप कह दें कि एलर्जी होती है, कुछ लोग कहते हैं ना मैं फ़लां चीज़ से एलर्जी को, कुछ लोगों को खुली किताब से एलर्जी है। बंद किताब उनको अच्छी लगती है, उसको सुर्ख रंग के सिल्क के गिलाफ़ में लपेटेंगे, गोटी भी लगाएंगे, बेटी को बड़े प्यार से जहेज़ में देंगे, स्पेशल एडिशन ख़रीदने आएंगे कि हमें जहेज़ में देना है कोई ख़ूबसूरत कागज़ का पेज दीजिए, जहेज़ सेट देंगे। लेकिन वो बच्ची शादी के बाद इतनी मसरूफ़ होती है या कर दी जाती है कुछ ऐसे कामों में, कई साल तक जहेज़ का मिला हुआ कुरान खुलता ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कि आज के दौर में वाकई लोग देते भी हैं कि नहीं, लेकिन पहले दौर में लोग बड़े अहतमाम से देते थे। मैंने देखा कि बस लोग जब बच्चियों की शादी की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले जहेज़ खरीद ये कुरान ख़रीदते हैं। एक माँ ऐसी आई, कुछ अर्से पहले की बात है, तो बहुत कॉन्शियस थी, क्यूरियस थी कि कुरान चाहिए, और जो चाहिए था उनको वो नहीं दिख रहा था वहाँ। उन्हें कहा गया कि मंगवा देंगे, कहने लगी नहीं, नो राइट नो, मुझे अभी चाहिए, क्या मजबूरी है? कहने लगी आज से मैंने बेटी की शादी की शॉपिंग शुरू की है और मैंने और चीज़ें शॉप करनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले कुरान ले लो। सुभान अल्लाह, ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ इसी पे ना रुक जाए इंसान। फिर ये खेल और तमाशे इंसान नहीं करता कि बच्चों की शादियों पे पहले तो आप कुरान पढ़ के दुआ कर लें और उसके बाद फिर आप उसी कुरान का मजाक उड़ाएं। फिर ऐसी दो रंगी चाल नहीं आती उस माशरे में। अल्लाह की किताबें लोगों को बदलती हैं। देखिए हर किताब जो है ना, वो इंसान को इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे दोनों तरह से फैसले करने के काबिल बनाती है। जैसे एक मशीन है ना, उसका आप एक पुर्जा अगर ख़राब कर दें तो सारी मशीन ख़राब होती है ना, इसी तरह जब किसी मुआशरे का एक बंदा ख़राब होता है ना, तो मशीन सारी ख़राब होती है। सिस्टम कब बिगड़ता है? जब उसके छोटे छोटे पुर्जे ख़राब होते हैं। किताब क्यों आई? चंद पॉइंट्स नोट कराऊंगी कि आखिर किताबें आती क्यों हैं। पहली बात यह कि किताबें अमली ज़िंदगी का निज़ाम बदलने के लिए आती हैं, और इसको जितना मोटा लिख सकें उतना मोटा लिखें, हाईलाइट कर सकें तो हाईलाइट कीजिए कि किताब का असल मकसद क्या है, कि अमली ज़िंदगी का निज़ाम बदल जाए, तब्दीली। फिर दूसरा मकसद, ये किताब इंसान को अंधेरों से रोशनियों में लाने के लिए आती है। सूरत इब्राहिम की पहली आयत में अतली तुखरिजन्ना समुलमाती इलन नूर, लोगों को अंधेरों से निकाल के, ख्वाहिशात के अंधेरों से, दुनिया परस्ती के अंधेरों से निकाल के एक हिदायत की रोशनी में लेके आए। फिर इसी तरह किताबें क्यों आती हैं? तीसरी वजह, किताब इंसान के जज्बात और उसके एहसासात को बदलने के लिए आती हैं। इंसान एक नया इंसान बन जाता है, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल बदल जाती हैं, वो नहीं रहता जो पहले था। उसकी प्रायोरिटी फिर दुनिया की बजाय आखरत बन जाती है, वो यहाँ के घर की बजाय वहाँ के घर की फ़िक्र में लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ है। फिर इसी तरह तीसरी यानी अगली वजह जो भी आप नोट कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे कि किताबें क्यों आती हैं, ताकि खुल्क के बारे में और खल्क के बारे में उनको रहनुमाई दे सकें, इंसान के इंटरपर्सनल मैटर्स को हल करने के लिए आती हैं। ज़ाहरी तौर पे इंसान कैसा हो और बातनी तौर पे इंसान कैसा हो, किताबें इसलिए आती हैं। फिर किताबें इसलिए आती हैं कि इंसान को पता चले कि कमाना क्या है और किससे बचना है। किताबें इसलिए आती हैं कि इंसान को पता चल जाए क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ये किताब खुद तो खामोश रहती है, बोलती नहीं है, किसी किताब को बोलता हुआ नहीं सुनेंगे, बोलेगी भी वही जो आप उसमें खुद फीड करेंगे। फिर कौन बोलेगा? ये अहले किताब बोलेगा, उस किताब का हामिल बोलेगा, उस किताब को सीखने और सिखाने वाला बोलेगा। ये ज़िम्मेदारी है किताब पढ़ाने वालों की कि वो लोगों को किताब के इन मकासद से रोशनास कराएं, कि लोगों को पता चले कि ये काम किताब आई क्यों, ये तुम्हारी मईशत से ले कर मुआशरत को और सियासत से ले कर तुम्हारे बैनुल अक़वामी कवानीन को बदलने के लिए आई, अदालती निज़ाम को बदलने के लिए आई। 90% से ज़ायद आबादी किसी मुल्क में मुसलमानों की हो और वहाँ इस्लाम का निज़ाम ना हो, तो क्या समझे कि किताब का तो पहला मकसद ही फौत हो गया? ना आज कानून हमारा, ना निज़ाम हमारा, ना स्कूल्स हमारे, ना हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, ना बच्चे हमारी सोच के रहे। माशरत देख लें तो हिंदू और नसरानियत की, मईशत देख लेंगे तो उस पर यहूदी कवानीन का और ऐसे लॉज हैं कि जिसके बग़ैर माल कमाया नहीं जाता उसका रोज़ा है। हाँ, इस्लाम कहाँ आज दिखता है? रोज़ों, नमाज, हज, ज़कात के तरीक़ों में, और उसमें फिर चार पांच टुकड़े हैं। उस एक छोटे से टुकड़े को फिर सब डिवाइड किया गया कि अब फिर इसको तोड़ दो, तुम कैसे पढ़ते हो और मैं कैसे पढ़ता हूँ, तुम ऊँची पढ़ते हो कि नीचे पढ़ते हो। और इस तरीके से लोग तरस रहे हैं आज उस सच्चे इस्लाम को। एक अगली वजह किताब के आने की क्या होती है कि किताब इंसानियत की क़यादत करने के लिए आती है, कायद बनाने के लिए। वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, किताब लोगों को इमाम बनाने के लिए आती है। तुम कायद हो, हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम के दौर से लेके इस्लाम के उरूज के दौर में देखिए, जंगें भी होती थी ना, वो इस्लाम के तरीक़ों से होती थी। किसी गैर मुस्लिम पे हाथ नहीं उठता था ना हक, किसी औरत पे हाथ नहीं उठता था, किसी बच्चे की तरफ निगाह नहीं उठती थी, किसी के चर्च, किसी के प्रीस को तकलीफ़ नहीं दी जाती थी, किसी के मंदिर को गिराया नहीं जाता था। और वो इंसाफ और अमन इस्लाम ने दिया इंसानियत को, आज भी इंसानियत उसी को तरस रही है। आज इंसानियत दोबारा चाहती है कि इस्लाम अपनी असल शक्ल में आए। नो VIP कल्चर ख़त्म किया इस्लाम ने, हद लगेगी तो वो फातिमा बिनते मोहम्मद को भी वैसी लगेगी जैसे दूसरी फातिमा को लग सकती है। आज हमने इस किताब का मजाक उड़ाया, खेल है, घर घर पढ़ते हैं, फ़ख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, या खुश होते हैं या आजिज भी होते हैं, लेकिन इस किताब का वो हक नहीं मिला जो देना था। इसी तरह इस किताब के नज़ूल का एक और मकसद क्या होता है कि किताब इसलिए आती है कि इसके हामिल इसके मुताबिक हुकूमत करें। यह हुकूमत करने के तरीके सिखाती है। क्या आज सीख गए? एक मुल्क को छोड़ दें, बाकी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को देख लें। अगर किसी को एग्जैक्ट पता है कि इस वक्त दुनिया में ग्लोब पे कितने मुस्लिम मुल्क हैं तो आप लिख सकते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बहुत होंगे। इतने मुस्लिम मुल्कों में कहाँ है ये 6-7 मकासिद जिसके लिए किताब आई? तो फिर दिख क्यों नहीं रहा? ये मकासिद पूरे क्यों नहीं हो रहे? इसकी वजह क्या है? कोई एक एक्सट्रीम पे चला गया ना तो कोई दूसरी पे चला गया। किसी ने सिर्फ़ एक सियासत पे दीन को लागू किया तो सारा दीन सियासत पे चला गया, किसी ने सिर्फ जिहाद पे बात की तो सारा दीन जिहाद का नाम हो गया, और किसी ने सिर्फ कमाने और खाने पे बात की। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस किताब के मकासद को हम पूरा कर सकें। एक आखिरी बात इस टॉपिक की करके आगे चलूँगी कि फिर किताब आती तो इतने खूबसूरत मकासद लेके है, तो फिर वो मकासिद पूरे क्यों नहीं होते? उसकी वजूहात क्या है, क्यों अमल नहीं होता? इंसान को इतनी प्यारी रहनुमाई मिले, उसको हेवनली एडवाइस मिले, अल्लाह ताला उनको गाइड करे, इतना प्यारा मैनुअल हो फिर भी वो किताब ठीक ना हो, इसकी वजूहात क्या होती हैं? पहली इसकी वजह ये बनती है, ख्वाहिश परस्ती। इंसान ख्वाहिश परस्त होने लगता है, पाबंदी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको अच्छी नहीं लगती पाबंद ज़िंदगी। आप देखिए कि पाबंद ज़िंदगी अच्छी ना लगना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की ग़ुलामी का पटा उतार के रख देना, और जब अल्लाह की ग़ुलामी का पटा उतरता है ना, तो फिर शैतान की ग़ुलामी का ज़रूर पहना जाता है, ये गर्दन कभी आज़ाद नहीं रहती। रब के आगे नहीं झुकेगी ना, तो फिर शैतान या उसके साथियों के आगे ज़रूर झुकेगी। इंसान ऐसी चीज़ों में पड़ जाता है कि जो उसकी फिर ख्वाहिशों को ही किसी हक़ पे रुकने ही ना दे। दूसरी चीज़ इसकी वजह क्या होती है, लोगों का खौफ। खौफ खौफ लोगों को किताब पे अमल नहीं करने देता, सच है कि झूठ? कितने मामले हैं जिस पे आप कई महीने से मुतरद्दित होंगी, कर लूँ कि ना कर लूँ, छोड़ दूँ इस काम को कि ना छोड़ूँ, क्यों नहीं छोड़ते? खौफ है, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें कहेंगे, लोग लोग लोग, ऐसे लगता है कि हमारा जीना मरना लोग हो गए। क्या हम रब के बंदे हैं कि बंदों के बंदे हैं? जो जिससे डरता है ना, वो उसका बंदा बन जाता है। अगर हम रब के नहीं हैं ना, तो फिर याद रखिए कि हम या अपने हैं या रब बंदों के। इसी का इलाज आगे बता दिया, फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। इंसान ऐसे मामलात में पड़ता है कि लोगों से डर के फिर अल्लाह के नाजिल करदा को छोड़ देता है, और फिर उसकी ज़िंदगी में किसी और के फ़ैसले होते हैं, फिर वो आयतों से खौफ खाता है। फिर एक और वजह है इस किताब के इंसान की ज़िंदगी के बिगड़ने की, वो क्या है कि जब दुनिया में सज़ा देने वाले कोई और हो और आखिरत में सज़ा देने वाला कोई और हो, उस बंदे की ज़िंदगी में इस किताब का रंग दिखेगा जिसको दोनों जहानों में एक ही की पकड़ का डर हो, और वो कौन है? मेरा रब। जब लोग दुनिया में पुलिस वाले के डर से काम छोड़ दें और आखिरत में अल्लाह के खौफ से काम छोड़ें गलत, तो भी तब्दीली नहीं आती। हम जब तक इस दुनिया के मामलों में भी रब से डर के गुनाह करना नहीं छोड़ेंगे, पुलिस का डर नहीं, हुकूमत का डर नहीं, लोगों का डर नहीं, अल्लाह का, वो पकड़ेगा। टिकट तो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन एक नाफरमानी की सज़ा भी तो मिलेगी ना, एक रूल भी तो ब्रेक किया। लोगों के डर से तो हम अपना पेपर वर्क पूरा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का डर नहीं रखते कि जहाँ भी रहो वहाँ के तकाजे पूरे करके रहो, जब तक कि वो तुम्हारे दीन के किसी रिचुअल के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। तो जब बंदा इन दो को मुख्तलिफ तरफ करता है ना, तो फिर तब्दीली आती है, कुछ नहीं होता, देख लेंगे, हाकिम एक ही अच्छा लगता है, वही सब चीज़ों को लेता है, फिर बात बनती है। जब इंसान की ज़ात दो हुक्मरानों के बीच में बटती है ना, तो दो रंगापन पैदा होता है, इसी का नाम निफाक है। एक दर का बंदा ही अच्छा होता है, जो इधर और उधर भटकता है ना, वो कहीं का भी नहीं होता। बड़े गलत यानी लैंग्वेज में हमारे ऐसे मुहावरे भी बने होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर अपनी किताब से रहनुमाई नहीं लेने देता। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकतबना अलैहिम, अब यहाँ से बात चल रही है लॉ की तरफ। पीछे तौरात की बात थी ना, इन्ना अनज़लना तौरात, हमने तौरात नाजिल की, ठीक है, हो गई तौरात नाजिल, देन उसमें ये सब कुछ था, उसकी हिफाजत करनी थी लेकिन लोग ना कर सके, ठीक है, अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया, हो गया। रब्बानी और खिबर जो हैं किताब की हिफाजत ना कर सके, ये भी हो गया। अब आगे अल्लाह ताला कुछ मिसालें दे रहे हैं। यहूद ने अपनी किताबों में जो कमी बेशियां की थी ना, चेंजेस की थी, अल्लाह के लॉज को तब्दील कर दिया था, अब उसकी कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं।